हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 46। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हृदय से समस्त भौतिक आसक्ति और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके एकाग्र मन और पवित्र बुद्धि के साथ मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः पदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीकान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरीति। वंशाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 46। अब तक हमने जो श्लोक पढ़े उसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी स्थिति का वर्णन किया कि मैं ये सब देखकर कैसा अनुभव कर रहा हूँ। अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस अगर हम लोग रिपीट करेंगे तो उसमें श्लोक नंबर 21 और 22 में अर्जुन ने भगवान को एक रिक्वेस्ट की थी कि हे भगवान अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्षेहं योद्धु कामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके चले, जिससे मैं यहाँ पर स्थापित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अभी तक उसके मन में कुछ नहीं था, खाली देखने के लिए बोला श्लोक नंबर 22 में, ठीक है। उसके बाद भगवान ने क्या किया, उसने क्योंकि बोला सेंटर में खड़ा कर दो, तो सेंटर में भगवान ने किसके सामने खड़ा कर दिया, भगवान ने श्लोक नंबर 25 में कहा। संजय ने बताया कि भगवान ने ऐसे कहा, भगवान ने कहा भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कौरवों को देख लो। यानी भगवान ने उसको पहले नहीं देखा है तो गौर से देख लो, लड़ाई आपको इनके साथ करनी है। और जब भगवान के ये वचन सुनने के बाद अर्जुन ने देखना शुरू किया तो अर्जुन की हालत बिगड़ गई और अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण को, श्लोक नंबर 28 में अर्जुन ने कहा दृष्ट्वैवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परुशुष्यति। हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्ष जायते गांडीवं संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदहियते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। आगे कहा भगवान से 30 में, श्लोक नंबर 30 में अर्जुन कह रहे हैं न च शक्नोमि अवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण नजर आ रहे हैं। और आगे कहने लगे न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षी विजयं कृष्ण न च राजं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है ना उसमें किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा देखता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण से अपने मन की व्यथा बोलते बोलते कहने लगे कि इन सब अपराधियों को मार कर भी हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि इससे तो पाप ही लगेगा। और जब पाप धर्म, क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा 39 श्लोक नंबर 39 में अर्जुन ने कहा कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्मो भी भावात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाश्रेय जायते वर्ण संकर। कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वैश्यवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां च कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा नष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं। क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने युद्ध के बहुत सारे दोष बताते हुए कहा। आगे भगवान से श्लोक नंबर 43 में कहा कि चलो मुझे अपनी कोई भी फिक्र नहीं है, लेकिन सब तो नरक में चले जाएंगे। अर्जुन ने कहा 43 में, अर्जुन ने कहा उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे प्रजापाल कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो और आगे अब ये सब पता है अर्जुन ने कि ये सब मुझे पता है, ऐसा होने वाला है, सब नष्ट होने वाला है और हम सब नरक में जाएंगे। और फिर आगे श्लोक नंबर 45 जो हमने कल पढ़ा था ना, जिसमें अर्जुन ने कहा था यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराश्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवे। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मार दें तो मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। यहाँ पर अर्जुन ने अपना फैसला बता दिया कि मेरे को लड़ाई नहीं करनी है और इससे बेहतर है कि वो मुझे लड़ाई में मार डाले। मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा, गांडी धनुष तो वैसे गिर गया था, तो बोला अभी मैं हथियार लेस हो गया हूँ, हथियार रहित हूँ, और अगर वो हथियार वाले आके मुझे मार डालेंगे ना तो भी मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। कम अज कम मेरी वजह से तो कोई गलत नहीं होगा, मेरी वजह से किसी कुल हानि नहीं होगी, मेरी वजह से तो कुछ है ना अपराध नहीं लगेगा, नरक में कोई नहीं जाएगा, तो इससे बेहतर है भले मुझे मार डाले। अपना निर्णय बता दिया। अब यहाँ तक तो अर्जुन बोल रहे थे, अर्जुन ने बोला था ये सब के ऐसा, लेकिन अब जो है ये जो श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं उसमें बोला कुछ नहीं जा रहा है, उसमें एक एक्शन है कि उसने क्या किया। अब जैसे हमने शुरू में पूछा था ना, शुरू में धृतराष्ट्र ने संजय से क्या पूछा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाशैव किम कुर्वत संजय। ये संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए, मेरे और पांडव के पुत्रों ने जो युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए थे उन्होंने क्या करा। तो दुर्योधन ने क्या किया वो तो उसने पहली लाइन में ही बता दिया कि वो अपने गुरु के पास गए और बताया कि ये व्यूह रचना हो रही है और अब लड़ाई करनी है और आप सबको भीष्म पितामह की रक्षा करनी है, ये सब बता दिया। और उसके बाद अब क्योंकि पांडवों के विषय में भी पूछा था ना, मामा कहा पांडवाश्चैव, तो पांडवों ने क्या किया। अभी तक कुछ किया नहीं था अर्जुन ने, क्या अभी तक डिस्कस चल रही थी, अर्जुन कृष्ण को बोल रहे थे ये और किया क्या, वो आज के श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ये किया अर्जुन ने, ये गलत सिचुएशन हो गई अर्जुन के सामने क्रिएट हो गई और उसको ये सब फील हो रहा था। उस वो अब अपने आप को मजीद रथ के ऊपर खड़ा नहीं रख सकता था, तो उसने क्या एक्शन किया वो आज हमें संजय धृतराष्ट्र को बताएंगे। संजय उवाच, कृपया मेरे साथ श्लोक का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। संजय कह रहे हैं एवमुक्त्वार्जुनः संखे रथोपस्थ उपावेशत् विस्रज्य शशरं पापं शोकसंविग्नमानसः। फिर से एवमुक्त्वार्जुनः संखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम् शोकसंविग्नमानसः। फिर से एवमुत्वार्जुनः सङ्खी रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः। शब्द का अर्थ देखिए। संजय उवाच, संजय माना वो सारथी था ना जो धृतराष्ट्र का जिससे पूछ रहा था उसका नाम है। उवाच का मतलब होता है उसने कहा, क्या कहा, एवं, एवं माना इस प्रकार, इस प्रकार किस प्रकार, जिस प्रकार अभी मैंने आपको सारे श्लोक बताए ना वो सारे प्रकार, यानी उस संजय क्या कहा है, कह रहे हैं एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये, उक्त्वा मतलब कहकर अर्जुन ने, अर्जुन ने इस तरह कहकर, किस तरह कहकर, अगर हम 45 कोई खाली लें तो उसने क्या कहा, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्य को रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मार डालें तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा, ये कहा। और फिर क्या किया, इसे बोला एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये, संख्ये माने युद्ध भूमि में, ये जो जगह पर जहाँ खड़े थे, क्योंकि संजय से पूछा भी यही था ना कि दान भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होकर क्या किया, तो फिर अब संजय उसको बता रहा है ऐसे कहकर संख्ये एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये युद्ध भूमि में ऐसा कहकर रथोपस्थ उपाविशत, रथोपस्थ माने रथ में आसन पर, रथ में देखो योद्धा जब लड़ाई करने के लिए जाते हैं तो खड़े होते हैं, ठीक है, जब शंख बज जाता है तो खड़े हो जाते हैं, बाद में रिलैक्स होकर बैठ नहीं सकते क्योंकि लड़ाई हो रही होती है, लेकिन उसने क्या किया, रथोपस्थ उपाविशत, वो बैठ गया, उपाविशत मतलब वापिस से बैठ गया आसन के ऊपर, जो पीछे सीट होती है ना उसके ऊपर बैठ गया, और विसृज्य सशरम, विसृज्य मना रख दिए, अब पहले गिर रहे थे पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन बाद में रख दिए, क्या सशरम चापम, सशरम मना बाणों को, चापम मना धनुष को भी, अब उसने पहले तो कोशिश की कि मैं लड़ाई करूं लेकिन अब उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो खड़ा भी नहीं हो सक रहा था, और एक डिसीजन भी ले लिया ऐसे बेहतर है कि वो मुझे मार डाले, तो एक कार्य किया उन्होंने, अब देखो ये एक्शन है ना कि उसने क्या किया, रथ में एक साइड पर बैठ गया और धनुष और बाण साइड में रख दिए, शोको, शोक का मतलब होता है दुख, उसको इतना दुख हो रहा था कि ये सब होने वाला है, मतलब उसका सर चिकरा रहा था कि मैं कुल का धर्म करूंगा तो उससे कितना बड़ा, कितने ज्यादा दुष्परिणाम निकलने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है और वो उसका कारण मैं बनूं, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसको बहुत दुख हो रहा था। संविघ्न इसका मतलब होता है संतप्त यानी उद्विग्न, बहुत ज्यादा, जैसे कोई बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है ना, बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है जो कि अनबियरेबल होता है, तो उसको बहुत ज्यादा संविग ऐसे होता था, संविघ्न इसको बोलते हैं, संतप्त हो गया था मानस मन के भीतर, यानी उसका मन इतना खिन्न हो गया था, इतना दुखी हो गया था कि भगवान को बोल दिया कि भाई मैं लड़ाई नहीं करूंगा, धनुष और बाण एक साइड पर रख दिया और पीछे जाके बैठ गया, बोला मैं अभी बैठ रहा हूँ, भले उस लोग आए और मुझे धनुष बाण से मार डालें, भले मैं तो लेकिन फिर भी धनुष बाण नहीं उठाऊंगा, इससे बेहतर है मैं उठाऊ ही नहीं। श्रीला प्रभुपाद जी अच्छा पहले अनुवाद देखिए। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। ये एक्शन है ना, इसलिए संजय बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन संजय से पूछ रहा था ना। श्री प्रभुवादी तात्पर्य में बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे कि आखिर इस सब का क्या कारण है जो अर्जुन ने ये एक्शन किया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था। जब अर्जुन ने फर्स्ट टाइम कृष्ण ने बोला था ना पार्थ देख लो कौन कौन खड़े हो गए यहाँ पर, उस टाइम पर क्या हुआ था, अर्जुन खड़ा हो गया था देखने के लिए क्योंकि भीष्म द्रोण सबको देख रहा था और फिर खड़ा हो गया था, लेकिन किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा था कि अपना धनुष बाण एक ओर रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। लेकिन अभी उसको उन सबको जब देखा तो उसको इतना ज्यादा दुख हुआ कि वो रथ के आसन पर दोबारा से बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर अर्जुन की एक मेन क्वालिटी की बात बता रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। वास्तव में ये जो पहला चैप्टर है ना, वो हमें सिर्फ इतना बताता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के अंदर के लिए आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अर्जुन विषाद योग के नाम से है और दिखा रहा है ये चैप्टर से हमें ये समझना चाहिए कि अर्जुन के सामने जब ऐसी भीषण स्थिति आ गई थी तो उसके हृदय में कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके हृदय में करुणा और कोमल हृदय। देखो शब्दों ने कितना अच्छा शब्द लिया है, ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय। यानी कि जब तक आपका हृदय नरम नहीं होता, जब तक आपका हृदय कोमल नहीं होता है, तब तक उसमें भक्ति का बीज नहीं बोया जा सकता। देखो शब्दों ने वापस से आप लास्ट लाइन देखिए, ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो अक्सर ये प्रश्न आता है ना कि क्यों अर्जुन को ही सुनाई गई भगवद गीता। तो अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होने के बाद, शंख बजने के बाद भी उसका हृदय इतना कोमल था कि वो लड़ाई नहीं करना चाहता था। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर ये जो भक्ति लता का जो बीज होता है ना, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ब्रह्मांड भ्रमियते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों जीव हैं, 84 लाख तो योनियां हैं, एक एक योनि में करोड़ों करोड़ों जीव हैं, वो भटकते रहते हैं, उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में ऊपर नीचे या दाएं बाएं आते रहते हैं, उनको कभी भी ये समझ में कोई बताने वाला भी नहीं होता है, कोई समझाने वाला भी नहीं होता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में इस तरह की कोमल भावना नहीं होती है। क्योंकि भक्ति जो है वो एक वृक्ष है, और वृक्ष किसी को काट कर दे देंगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूसरे दिन तो सूख जाएगा। लेकिन भक्ति जो है वो बीज है, भक्ति जो है वो बीज है, और बीज के लिए क्या होता है, आपको क्या चाहिए, धरती चाहिए ना, एक नरम जमीन चाहिए जिसमें आप उसको बो, और जब उस बीज को आप बोएंगे, उसको संचालित करेंगे जल जल से, उसके बाद ही वो बड़ा छोटा पौधा बनेगा, फिर बढ़ते 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 वृक्ष बनेगा, फिर फल देगा। इसी तरह से यह भक्ति जो है वो भी एक बीज है, और वो आपको दो तरह से मिल सकती है। एक तो पूर्व जन्म के बहुत सारे आपके शुभ कर्म इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद आपको भक्ति में भक्ति का ये जो बीज है वो प्राप्त होता है। लेकिन वास्तव में हम लोग कलयुग के प्राणी हैं, और कलयुग में हमारा होना यह सिद्ध करता है कि हमने कोई पुण्य कर्म किए ही नहीं है। क्योंकि अगर पवित्र कर्म किए होते तो इस अपवित्र युग में हमें नहीं आना पड़ता। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा, क्योंकि भगवान करुणा सागर हैं, कृपा सागर हैं, और परम करुण हैं चैतन्य महाप्रभु, हम पतित जीवों की को कृपा देने के लिए इस कलयुग में अवतार लेकर आए कि इन पतितों का क्या होगा, इन्होंने खाली अपराध किए हैं, इनके जीवन में उनके पास इतने शुभ कर्म तो हैं ही नहीं, तो फिर इनको भक्ति तो मिलेगी नहीं। तो वो अपनी परम करुणा को दर्शाते हुए गुरु कृष्ण कृपा पाइए बस। सिर्फ और सिर्फ आज हमें, हमारे पास अगर भक्ति का कोई जरा सा भी हम कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरु और कृष्ण की कृपा है। ये तो भक्ति तो दो तरीकों से मिलती है ना, एक तो हमारे जन्मों के अनुसार और दूसरा कृपा की वजह से। तो ये हम सबको अगर मिली है तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की और गुरु महाराज की कृपा है, वैष्णवों की कृपा है कि हम भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं। बाकी हमारे पिछले जन्मों का कर्म का, इवन मैं तो अपने बारे में कहूँ कि मैंने कोई ऐसे अपराध किए होंगे इतने नरकीय जीवन से गुजर कर कि हृदय इतना अच्छा भक्ति का मौका मिला है, लेकिन फिर भी वह स्वाद नहीं आता भक्ति में, क्योंकि अपराध जो है वो आड़े आ जाते हैं। तो गुरु की कृष्ण की कृपा है कि हम जो है वो हमने ये सब ग्रहण किया है, लेकिन वो जो आनंद आना चाहिए वो अपराध बार बार हमारे सेंटर में आ जाते हैं और वो आनंद हमें नहीं महसूस करने देते। यहाँ पर क्या, अब भक्ति लता बीज चलो ठीक है, गुरु और कृष्ण की कृपा से आपको मिल गया, लेकिन अगर आपको बीज प्राप्त हो जाए और उसको आप तिजोरी में या घर में कहीं पर सेफ जगह पे रख दो, तो वो बीज कभी भी उपजेगा नहीं। उस बीज को बोने के लिए आपको एक नरम जमीन चाहिए जहाँ पर आप उस बीज को बोएंगे, और फिर पानी और सूर्य प्रकाश जब उसको वातावरण अच्छा मिलेगा तो फिर वो बीज आहिस्ता आहिस्ता पौधे में बदल जाएगा, फिर वृक्ष फिर फल देने लगेगा। उसी तरह भक्ति लता का जो बीज प्राप्त हुआ है हमें, उसको भी बोना पड़ेगा, और उसको किसी धरती में नहीं, उसको हृदय में बोना होता है। भक्ति का बीज हृदय में, और हृदय जब तक कठोर होगा ना, तब उसमें कभी भी, अब जैसे सीमेंट की जमीन पर होता है तो हम अगर उस पे बीज बोएंगे तो कभी भी नहीं उपजेगा। उसी तरह देखो श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला, ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति, एकदम कोमल होना चाहिए आपका हृदय, उसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, कोई किसी के लिए वैर भाव नहीं होना चाहिए। और वही जैसा अर्जुन का हृदय था ना, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है, ऐसा ही पवित्र और नरम हृदय। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना आमानीन मानदेना कीर्तनी हसदा हरि। राह में गिरे हुए तिनकी से भी जो अपने आप को तुच्छ समझता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहन शुरू है, जो अपने ही मान की कोई उपेक्षा नहीं करता और अन्य समस्त लोगों का सम्मान करता है, ऐसा व्यक्ति हरि नाम का सतत कीर्तन कर सकता है। तो यदि हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना है, भगवान के शब्दों को समझना है, अपने हृदय में उस भक्ति लता के बीज को बोना है और उसको वृक्ष में बदलकर उसके फूलों को भगवान के श्री चरणों को अर्पण करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें नरम हृदय की आवश्यकता है। एकदम कोमल हृदय ही आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त स्थान है, और जब हम उस हृदय में भक्ति का बीज बोते हैं तो आत्मज्ञान, क्योंकि भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम् ददामि बुद्धि योगं तम् येन माम् उपयान्ति ते। जो प्रेम और भक्ति के साथ सदैव मेरा भजन करता है, मैं उसी को ज्ञान देता हूँ जिससे वो मुझे समझ सकते। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्रों की नहीं, बल्कि आपके हृदय में कोमलता की, विनम्रता की आवश्यकता है, फिर ही आप भले, वरना तो आप सारे शास्त्र के सारे श्लोक कंठस्थ कर दो, यदि आपका हृदय कोमल नहीं है तो उसको कभी भी आप ग्रहण नहीं कर सकते, उसका उपयोग अपने जीवन में नहीं लगा सकते। दुनियावी तालीम कोई जरिया नहीं है, बल्कि सांसारिक जो एजुकेशन होती है भगवान के साथ हमारे प्रेम के रिश्ते को समझने का एक जरिया है। जो भौतिक हमारी काबिलियत है, बेकार के इल्म से हासिल होने वाले ज्ञान की बजाय हमें आध्यात्मिक का सच्चा ज्ञान हासिल करना चाहिए, क्योंकि ना इस जिंदगी में और ना ही उस जिंदगी के बाद ये जो भौतिक ज्ञान जो है ना, वो हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो जाने ही नहीं, एजुकेशन हासिल करने का भी सिर्फ यही एक भाव होना चाहिए कि ये एक जरिया है जिससे मैं अच्छे तरीके से भगवान की सेवाएं कर सकूंगा। वास्तव में भक्तों, कृष्ण वेदों को जानने से नहीं बल्कि भक्त की निम्रता से खुश होते हैं। हकीकत में जो सच्चा और अकलमंद है वो जानता है कि भगवान ही सब कुछ है। अगर कोई शख्स बहुत सी चीजें जानता है लेकिन वो भगवान को नहीं जानता तो वो कुछ नहीं जानता। क्योंकि आज जो कुछ भी हमारे पास है, जो भी काबिलियत है, जो कुछ भी हमें मिला है, भगवान ने कह दिया भगवद गीता में, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, इवन हमारा शरीर जो कुछ भी है वो भगवान का दिया हुआ है। वो हवा जिससे हम सांस लेते हैं, चीजें जो हमारे पास है, हकीकत में हमारा ये शरीर और आत्मा भी उन्हीं भगवान का है। इसलिए उनके दासों की तरह हर चीज उनकी खुशी के लिए इस्तेमाल करना ही आध्यात्मिक ज्ञान का लक्ष्य है। इस तरह जितनी ज्यादा जहानत, ज्यादा जितने हमारे अंदर बुद्धि होगी, जितना भगवान ने हमें ज्यादा अकल दी होगी, और जितनी ज्यादा तो फिर क्या होगा, जितनी ज्यादा जहानत है उतनी ज्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। जैसे अर्जुन था, अर्जुन क्योंकि ज्यादा अक्लमंद भी था, ज्यादा उसको भगवान ने बहुत सारी चीजें दी थी जो आम लोगों से उसको श्रेष्ठ कर रही थी, तो जाहिर सी बात है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा थी, उसकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा थी। और जो अपनी इन जहानतों का, अपनी इन जो भी उसको चीजें मिली हैं, जो भी ज्यादा श्रेष्ठ बना रही है उसको दूसरों से, जैसे अकल है या पथ है या पद है, तो जो भी उसको किसी को हम ज्यादा देते हैं तो उससे ज्यादा उपेक्षा भी करते हैं। और अगर हम उन जहानतों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमें उतनी ज्यादा सजा मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शूद्र वो अपराध करे और कोई ब्राह्मण भी अपराध करे तो उनको एक जैसे सजा मिलेगी। नहीं, शूद्र के पास ज्ञान नहीं है, शूद्र के पास ऐसा समय नहीं है कि वो अच्छा टाइम भगवान के लिए निकाल सके। उसकी सेवाएं ऐसी होती हैं कि उनको है ना, दूसरे जैसे वर्ण होते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय, उनकी सेवा करनी होती है। लेकिन वही अपराध यदि ब्राह्मण करता है, क्योंकि ब्राह्मण के पास तो ज्ञान होता है, और अगर वही अपराध जो शूद्र ने किया है वही ब्राह्मण भी कर रहा है तो ब्राह्मण को उससे कई गुना ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। तो जितनी जिसके पास जहानत होगी, जितनी जिसको फैसिलिटीज मिली होंगी, उससे उतनी ज्यादा उपेक्षा भी की जाएगी। कभी कभी नया भक्त सोचता है कि सबसे अच्छा रास्ता परित्याग का है, कि इससे बेहतर क्या है, हम अपने सारे कर्मों का त्याग कर दें। इससे बेहतर है कि सब कुछ करना छोड़ दें, नियत कर्म छोड़ दें और क्या करें, बैठ के आराम से अपनी भक्ति करें। जिसका मतलब है वो समझता है कि तमाम दुनियावी असरात पर पाबंदी करके खुद को एक अकेली जगह में छुपा दे, बस कोई भी मुझे काम नहीं करना पड़े, भगवान की भक्ति करूंगा और बच जाऊंगा। लेकिन ये तो ठीक वैसा ही होगा कि अगर कोई टैक्स नहीं दे सकता तो अपना घर ही जला दे। जबकि बुद्धिमानता या अकलमंद या मुकम्मल सॉल्यूशन तो ये है कि वो अपने घर से कुछ रुपए कमाए, तब उसे टैक्स देने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। बस थोड़ा सा है ना, कम उसी जगह पर रहकर कुछ ऐसा कार्य करे कि वो आराम से टैक्स दे सके। इसी तरह अगर हम अपनी तमाम जहानतों का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करेंगे तो दुनियावी गलत चीजों की वजह से किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का वादा है कि वो हमारी सभी पाप वाली हरकतों से हमें निजात दिलाएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। यानी कि भगवान ने ये बता दिया है ना कि आपके समस्त अपराधों वाली चीजों को मैं आपके समस्त अपराधों का नष्ट कर दूंगा और आपको मोक्ष ही श्यामे मास, तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा, तुम खाली एक ही काम तो करना, मेरी शरण में आ जाओ और किसी भी चीज से तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, मास शुच। वास्तव में भक्तों, जो इस भौतिक शरीर से लगाव रखता है और मैं और मेरा के ख्याल में सोचता है, वो सबसे बड़ी अज्ञानता में है। वो कभी भी भगवान को नहीं पा सकता और कभी भी खुद को असली सूरत में जैसा वो है वैसा नहीं जान सकता। जब तक हम अपने में थोड़ा सा भी गुरूर रखते हैं, अहंकार रखते हैं, हम भगवान के धाम जाने से रोक दिए जाते हैं। शास्त्र कहता है कि भगवान के धाम में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी दान नहीं दिया, क्योंकि उनकी भौतिक स्थिति
ऐसी थी नहीं कि वो दान दे सके। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी यज्ञ नहीं किया क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनी कि वो यज्ञ कर सके। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी विग्रह पूजा तक नहीं की क्योंकि उनको कभी कोई सिखाने वाला नहीं था कि विग्रह पूजा। लेकिन शास्त्र कहता है कि भगवान के उस परम धाम में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके अंदर निम्रता ना हो, जिसके अंदर विनम्रता ना हो, जिसके अंदर गुरूर हो, घमंड हो, अहंकार हो। तो ऐसे व्यक्ति भगवान, परम पुरुष भगवान के धाम जाने से रोक दिए जाते हैं। बेशक भगवान तक आसानी से पहुंचा जा सकता है लेकिन सिर्फ उनके जरिए जो भौतिक चीजों से, भौतिक आसक्ति से आजाद है। सांसारिक तरक्की की राह, दौलत, शान, शौकत, इल्म और खूबसूरती हमें भगवान के रूहानी नाम को पुकारने से रोकते हैं क्योंकि भौतिक आसक्ति इतनी होती है कि हमारा भगवान के नाम के प्रति हमारा आकर्षण कम हो जाता है। वास्तविक नम्रता, वास्तविक विनम्रता जब हमारे हृदय में नहीं होगी उसके बगैर हम भगवान का पवित्र नाम का जप कर ही नहीं सकते। जिस तरह एक बेसहारा बच्चा अपने आप को अपने बेसहारा होने के कारण सारा का सारा, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई घमंड नहीं होता है, कुछ अहंकार नहीं होता है, वो पूरा का पूरा अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट होता है, अपने माता पिता की शरण में होता है। इसी तरह हमें भी पूरी तरह से भगवान के हवाले खुद को कर देना चाहिए। देखो अर्जुन ने क्या किया, बोला कि नहीं कर सकता हूँ, अब रथ पर रख दिया और बैठ गया। अब बोला भगवान तुम्हें जैसा करना है, मेरे रथ को जिधर जाके खड्डे में डालना है डालो, मैं कुछ नहीं कर सकता, पूरा का पूरा सरेंडर। तो ऐसा है कि जब हम अपने आप को पूरा का पूरा भगवान के हवाले कर देंगे और वो कैसे करना है, हमें कैसे करना है, भगवान के पवित्र नामों को कंटिन्यूस गाने से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब इस तरह से कंटिन्यूस भगवान के पवित्र नाम को गाएंगे तो भगवान हमें अपने शरण में ले लेंगे क्योंकि जब तक हम अपने आप को कुछ समझेंगे, थोड़ा सा भी अहंकार होगा तो भगवान सोचेंगे चलो ठीक है करने दो, लेकिन जब भगवान देखेंगे कि ये पूरी श्रद्धा से मेरी शरण में आ गया है तो वो तुरंत ही हम पर कृपा करेंगे, वो यकीनन ही हमारी मदद करने के लिए आएंगे। जिस तरह अर्जुन की सिचुएशन है कि अर्जुन ने क्या किया था, पूरा का पूरा अपने आप को भगवान के सरेंडर कर दिया था और उसके अंदर एक ऊपर गुण था जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उसको श्रीमद् भगवद गीता का ये अनमोल ग्रंथ उपहार में दिया। और वो क्या था, दयालु तथा कोमल हृदय। अपने शत्रुओं के साथ भी वो दयालु था। भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे भक्त जो कि शत्रु और मित्र में समान। भगवान ने कहा भी है चैप्टर नंबर 12 टेक्स्ट नंबर 18, मेरा प्रिय श्लोक है, बहुत ही सुंदर है। भगवान कहते हैं समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगवर्विवर्षिते। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए एक समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख में, तथा यश या अपयश में समभाव है, वह भक्त मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आज तक हमने यही पढ़ा कि अर्जुन के अंदर कितनी सारी क्वालिटीज थी जिसकी वजह से वो भगवान को बहुत प्रिय था। और इसी वजह से क्योंकि भगवान ने ये प्रेम गीत अपने भक्तों को सुनाने के लिए, जो उनसे प्रेम करते हैं उनको सुनाने के लिए कहा है, तो जाहिर सी बात है वो क्वालिटीज तो होनी चाहिए ना जो भगवान के भक्तों में होती है, भगवान के प्रेमी में होनी चाहिए, तभी हम इस पवित्र ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे और भगवान हम पर गुरु महाराज कृपा करेंगे और हम इसको ग्रहण करके अपने जीवन में उसको उतार सकेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ।
हरि ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।